नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले मन का दीप जला, दीप जला ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले ख्वाबों में जो खोया है जा, जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस वचन के द्वारा हमने अभी तक बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती बातों को अपने जीवन में सीखा है। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा भी हम सबको आशीष दे। हे हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो आपके वचन को सुनने के लिए रेडियो के सम्मुख बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जो आपके वचन को सुनता है उसे समझ सके, अपने जीवन में ग्रहण कर सके। यदि उनके जीवन में किसी प्रकार की बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं या कुछ ऐसी गंदी आदतें हैं, वे उससे छुटकारा प्राप्त करें। हमारे विनती उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन से निराश हैं, जो अपने जीवन में दुखी हैं, बीमार अवस्था में हैं, उनकी आशा खत्म हो गई है, परिवार टूट चुके हैं, बच्चे छोड़ चुके हैं और किसी न किसी रूप में निराश और हताश हैं। पिताजी, आप उन्हें अपने शांति और आनंद प्रदान कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए ताकि वे जानने पाएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप उनके सृष्टिकर्ता हैं। आप चाहते हैं कि हर एक मनुष्य आपकी निकटता में रहे। पिताजी, आज की इस घड़ी हम सबके साथ होइए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक को निकाल लीजिए और उसके 22 अध्याय से हम अध्ययन आरंभ करेंगे। नीति वचन 22 अध्याय उसका 14 पद लिखा है, पराई स्त्रियों का मुंह गहरा गढ़ा है, जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। मेरे मित्रों, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है वही मनुष्य उस तरीके के पाप में गिरता है। यदि आप परमेश्वर की निकटता में बने रहेंगे तो निश्चय ही आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं नीति वचन 22 के 15 पद में, लड़के के मन में मूर्ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा को दोहराने का अर्थ है कि उस पर अधिक ध्यान दिया जाए। बच्चों को अनुशासन की आवश्यकता है। उचित अनुशासन बच्चों को रिस नहीं दिलाएगा। अनुशासन का अर्थ क्रोध करके पिटाई करना नहीं है। उचित अनुशासन के द्वारा बच्चा मूर्खता करना छोड़ देगा और माता पिता की आज्ञाओं का पालन करेगा। नीतिवचन 22 उसके 28 पद में लिखा है, जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसराइल के वंशजों को मिस्र से निकाल कर लाया और उन्हें अपना देश दिया। हम भूल जाते हैं कि उसने प्रत्येक गोत्र को अलग अलग स्थान दिया और प्रत्येक गोत्र के हर एक कुछ को उपयुक्त भूभाग भी दिया। उन्हें अपनी अपनी भूमि को पत्थरों को लगाकर विभाजित करना था। मेरी भूमि के एक कोने में एक बड़ा पत्थर लगा है और दूसरे सिरे में भी एक बड़ा पत्थर है। उसके आरंभ और अंत की पहचान होती है। इसका अर्थ है कि मैं अपनी सीमा में ही रहूं। भूमि के इन चिन्हों के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें विशेष निर्देश दिए थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी की सीमा जिसे प्राचीन लोगों ने ठहराया हो न हटाना। ये चिन्ह पीढ़ी से पीढ़ी तक चलते थे और अति महत्वपूर्ण भी थे। जब उस भूभाग का स्वामी बूढ़ा हो जाए और देखने में सक्षम न हो तो पड़ोसी के मन में लालच आ सकता था कि उसके पत्थरों को आगे हटाकर कुछ भूभाग अपने भाग में कर ले। परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए कठोरता से मना किया। यह धोखा था। मेरे प्रियो, मैं इसे आत्मिक संदर्भ देना चाहता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं असंगत बात करता हूँ, परंतु आप मेरा विश्वास करें कि आज विश्वास के चिन्ह हटा दिए गए हैं। उन्हें हटाने वाले स्वतंत्र विचार या आज का चलन है। ऐसे लोग कहते हैं, प्रेरित पौलुस के समय की शिक्षा अब पुरानी हो गई है, अब वह व्यवहार योग्य नहीं है। हमने देखा है कि धर्मशास्त्र प्रेरित वचन नहीं है। हम इस विचार का त्याग कर सकते हैं। हम प्रभु यीशु के ईश्वर होने के विचार को भी अस्वीकार कर सकते हैं। मसीही विश्वास की पहचान करवाने वाली ये शिक्षाएं अनेक कलीसियाओं में आधुनिकीकरण के कारण भुलाई जा रही है और भुलाई जा चुकी है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें आगे बढ़कर इन पहचान चिन्हों को हटाने की अपेक्षा हमें पीछे लौटना चाहिए और प्राचीन विश्वास के चिन्हों को अपनाना चाहिए। इन्हीं प्राचीन नैतिक मूल्यों, आत्मिक सत्यों के कारण, बाइबल के कारण हमारा देश महान कहलाता था। आज हम केवल सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समाधान को ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। मेरे मित्रों, अध्याय के अंत में परिश्रमी मनुष्य की सराहना की गई है। नीतिवचन 22 अध्याय के 29 पद में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि वह परिश्रमी मनुष्य को प्रतिफल देना चाहता है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने अनंत काल के लिए अपनी सराहना के शब्द कहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 21 पद में, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। उसकी प्रशंसा पाना आपके कर्मों पर आधारित नहीं होगा या कितनों को गवाही दी या आपके परिश्रम पर, परंतु उसके दिए गए काम में आप कितने विश्वास योग्य रहे हैं उसके अनुसार से आपको मिलेगा। उसने आपको माँ या बाप, माता या पिता बनाया या घर का एक छोटा बच्चा बनाया। मूसा की माता ने माँ के उत्तरदायित्व में विश्वास योग्यता दिखाई और धर्मशास्त्र में उसका नाम आज अमर हो गया। विश्वास योग्य सेवक का प्रतिफल महान है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 10 से 11 पद में हम देखते हैं, पौलुस कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, अत्यधिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यह सब परमेश्वर का विश्वास योग्य होना है और हमें ऐसा ही बनना है। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि हमारा युवक काफी समय से बुद्धि की पाठशाला में है। मेरे विचार में शीघ्र ही दीक्षांत समारोह होने वाला है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 22 समाप्त हो गया है और अब हम अध्याय 23 में आगे बढ़ते हैं। 23 अध्याय के 1-3 पद में लिखा है, जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि कहीं दावत पर जाओ तो पेटू न बनो, विशेष करके जहां स्वादिष्ट भोजन हो। उचित होगा कि थोड़ा हम भूखे ही रहें। दूसरे शब्दों में, हर काम में संयम रखें, खाना खाने में भी शिष्टाचार और आत्म संयम रखें। आज कहा जाता है कि कुछ लोग भूख के कारण नहीं, मानसिक तनाव के कारण खाना खाते हैं। हमें तनाव रहित होकर आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। नीति वचन 23 उसके 4-5 पद में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। कहने का अर्थ है कि धनवान होने में कोई बुराई नहीं है, धनवान होने के लिए परिश्रम करने में कोई बुराई भी नहीं है, परंतु उसे जीवन का लक्ष्य न बनाए। धन आपके जीवन का लक्ष्य न हो। कुछ लोगों के लिए पैसा ईश्वर है, वे उसकी लालसा करते हैं, उसके भूखे होते हैं। परमेश्वर के संतान के लिए यह अनुचित है। वचन में बताया गया है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, फिर क्यों धन के पीछे आप भागते हैं? मेरे प्रियो, एक धनवान मनुष्य ने मुझसे कहा, मैं पैसे के लिए पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं पैसे उसके उपयोग के लिए कमाता हूँ। पहले तो मैं पैसा इसलिए कमाता था कि उससे मेरे लिए कुछ हो, परंतु अब मैं पैसा इसलिए कमाता हूँ कि उससे परमेश्वर के लिए कुछ हो। मनुष्य के धनवान होने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के लिए मन में वशीभूत करने वाली इच्छा उत्पन्न होना बुरा है, यह लालच है और मूर्ति पूजा है। कुछ लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, परंतु वे जीवन पर्यंत पैसे की उपासना करते हैं, सुबह उठते साथ पैसे की लालसा करते हैं। मैंने अपने जीवन में एक समय यह भी देखा है कि मनुष्य दलाल बाजार में ऐसी नियमितता एवं निष्ठा से आते हैं जैसे निष्ठा से विश्वासी आराधना में भी नहीं आते। मैंने वहां एक विश्वासी से पूछा कि वह रविवारीय आराधनाओं में दिखाई नहीं देता है, तो उसने भागते भागते कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। बड़ी विचित्र बात है कि रविवार को परमेश्वर की आराधना के लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, परंतु सोमवार की सुबह दलाल बाजार जाने के लिए वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। यही लालच है। नीति वचन इसी की चर्चा कर रहा है, यह झूठा ईश्वर है और उकाब की नाई कभी भी उड़ जाएगा। नीति वचन 23 उसके 6-8 पद में लिखा है, जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझ से कहता है तो खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जो कौर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। युवक के लिए और विशेष करके युवा प्रचारक और सेवकों के लिए यह एक अच्छा परामर्श है। मुझे अनेक बाइबल सभा के प्रचारकों ने यह कहकर चिताया है, आपको ऐसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा भोज पर बुलाया जाएगा, परंतु आपको बड़ी सावधानी से उनसे बातें करनी होगी, क्योंकि वे नाम बिगाड़ने वाले हैं। वे आपसे प्रश्न पूछेंगे और बाद में आपके उत्तर आप ही के विरुद्ध काम में लेंगे। मेरा यह स्वभाव है कि जब मैं तनाव रहित मित्रों के साथ भोजन करता हूं, तब मैं कुछ भी कह देता हूं, जिसका अर्थ गलत लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। मेरे मित्रों, बात पुरानी नहीं है। एक दंपति ने मेरे मित्र के विषय कही गई बातों को बतंगड़ बनवा दिया। वह मेरा अति प्रिय मित्र था, इसलिए मैंने हास्य भाव में कुछ कह दिया था। हम दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते थे। वह मसीह में मेरा भाई है। उसने मुझसे पूछा, आप मेरे बारे में क्या कहते हैं, या आप मेरे बारे में क्या कहते फिर रहे हैं। मैंने उसे बताया तो वह हंसने लगा। उसने कहा, उन्होंने आपकी बात को लेकर घुमा दिया। उसने मुझे यह भी बताया कि वह उनसे भेंट करने गया था और वह भी मेरे बारे में कुछ कहकर आया है, जो मुझ तक दूसरे रूप में पहुंचने वाली होगी। यह नीति वचन लिखते समय सुलेमान के मन में ऐसे ही लोगों का विचार था, जो डाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना। अतः भोज में निमंत्रित किए जाने पर ध्यान रखें कि किसके साथ आप भोजन कर रहे हैं। वे जैसे दिखाई देते हैं वैसे मैत्रीपूर्ण नहीं होंगे। नीति वचन 23 के 10 पद में लिखा है, पुरानी सीमाओं को न बढ़ाना और न अनाथों के खेत में घुसना। यहाँ फिर से पुराने चिन्हों का विवरण है। यदि आप विश्वास से टल गए हैं तो अपनी संतान को अपना यह अवगुण न सिखाएं, क्योंकि वे इसके लिए भुगतेंगे। आपको तो आपके विश्वासी माता पिता की सुरक्षा प्राप्त थी, परंतु आपकी संतान के साथ ऐसा नहीं है। मेरी पीढ़ी के वंशज तो ईश्वर भक्त थे और हैं, परंतु हमने अपने संतान को यह नहीं दिया है, या हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी पीढ़ी ने युवा पीढ़ी उत्पन्न की और हम भी उन्हें दोष देते हैं। नीति वचन 23 उसके 13 पद में लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। हम पहले भी देख चुके हैं, परंतु पौलुस कहता है कि हम क्रोध में आकर ऐसा ना करें। सुधार करना अनुशासन के निमित्त है, दंड देने के लिए नहीं। यदि अनुशासन से बच्चे का चरित्र निर्माण न हो तो किसी काम का नहीं है। आप बच्चे को रिस न दिलाएं, उसे प्यार से समझाएं, तो निश्चय ही बच्चा आपसे प्रेम करेगा और आपकी बातों को सुनेगा। हम बच्चों से यह न कहें कि उन्हें हम दंड देंगे, परंतु यह कि अनुशासन सिखाएंगे। पौलुस इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद में कहता है कि अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका चाल चलन सुधारो, उनका पालन पोषण करो। सदा स्मरण रखें, अनुशासन का अर्थ है प्रभु की शिक्षा और चेतावनी। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नीति वचन 23 उसके 19 से 21 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। युवकों, अपनी संगति से आप सावधान हो जाएं। एक ही रंग की चिड़ियों को आप देखेंगे कि वे साथ बैठती हैं। बुरी संगति से दुराचार उत्पन्न होता है। युवाओं के लिए यह एक विशेष चेतावनी है। नीति वचन 23 के 22 पद में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अब युवक बुद्धि की पाठशाला से दीक्षांत प्राप्त करने वाला है। उसके माता पिता वृद्ध हो रहे हैं, उसका पिता तर्कहीन होगा, कुछ असामान्य व्यवहार भी करेगा, परंतु फिर भी उसके माता पिता में उससे अधिक समझ है। आप यदि अबशालोम से बात करने का सौभाग्य प्राप्त करते तो आप इसका उदाहरण सुन पाते। वह निश्चय ही आपसे कहता कि उसके पिता में उससे अधिक बुद्धि थी। वह सोचता था कि वह अपने पिता दाऊद से विद्रोह करके विजयी होगा, परंतु दाऊद युद्ध का विशेषज्ञ था। उसने युद्ध करके भारी गलती की। उसे यरूशलेम से बाहर नहीं आना था, क्योंकि दाऊद को युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान था। उस युवक के लिए वह प्राणनाशक था। नीतिवचन 23 उसके 23 में लिखा है, सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हमें पैसा देकर सत्य को खरीदना नहीं है, वह हमें बिना पैसों के मिल रहा है। यशाया की पुस्तक 55 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जी हाँ, परमेश्वर की संतान के लिए यह सब प्रभु यीशु में है। वह सत्य है, ज्ञान है और समझ है। एक ज्ञानवान फरीसी शाऊल, जो पौलुस कहलाया, इसके बारे में कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। नीतिवचन 23 उसके 26 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। अब कोई कहेगा, मैं तो सोचता था कि परमेश्वर को हमारे पुराने मैले मन नहीं चाहिए। यह सच है, वह उसके लिए किसी काम का नहीं है। परंतु जब वह कहता है कि हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा, तब वह किसी उद्धार से रहित मनुष्य से नहीं, अपने पुत्र से कह रहा है। वह उस मनुष्य से कह रहा है जिसे उसने नया मन नया जीवन दिया है, जो नया जन्म पा चुका है और जिसके पास नया मन है। वह उससे कहता है, मैं चाहता हूं कि तू मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि तू मेरे अधीन हो जाए। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञाओं को मान। जी हाँ मेरे प्रिय मित्र, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निश्चय ही आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। नीतिवचन 23 के 27 पद में लिखा है, वेश्या गहरा गढ़ा ठहरती है, और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। अब यदि आप ना माने कि पराई स्त्री वेश्या है, तो यहाँ दोनों को एक ही कहा गया है। नीतिवचन 23 के 28 पद में लिखा है, वह डाकू के समान घात लगाती है, और बहुत से मनुष्यों को विश्वासघाती कर देती है। पुराने नियम में दो पुरुषों का जीवन इसका उदाहरण है। उत्पत्ति में यहूदा की दुखद कहानी, और दूसरा है शिमसोन। यदि वह आज होता तो बताता कि एक वेश्या कैसी निर्दयी होती है। वह बिना किसी संवेदना के आपको हानि पहुंचा सकती है। आज हम संसार में बीमारियों को देखते हैं जो वेश्याओं के द्वारा ये फैल रही है, जिसको हम एड्स कहते हैं। यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे तो इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। नीतिवचन 23 उसके 29 से 30 पद में लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके आकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। यहाँ फिर शराब के विरुद्ध चेतावनी है। हमने मदिरा और पराई स्त्री के विरुद्ध अनेक चेतावनियां देखी हैं। शराब का परिणाम बहुत बुरा है, स्त्री का परिणाम बहुत बुरा है। नीतिवचन 23 उसके 32 से 35 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है, और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। मेरे मित्र, शराब के कुप्रभाव का कैसा चित्रण यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति न केवल अपने आप को बर्बाद कर रहा है, परंतु वह अपने परिवार को, अपने समाज को भी बर्बाद कर रहा है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी बुराइयों से बाहर निकल जाएं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो इस प्रकार शराब का आदी है। उसके परिवार, उसके लोग बहुत चिंतित हैं। वह अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। आज बहुत सारे बहनें, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बच्चे अपने पिता से परेशान हैं। मेरे मित्र, आज ये वचन आपके लिए है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे नाराज रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे दूर रहें? सिर्फ आपकी वजह से पूरा परिवार नाश हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आपको इसे छुटकारा दे सकता है। तो आइए आज प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाइए। उससे कहिए, प्रभु मैं इन सारी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। जी हाँ, आज जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो निश्चय ही वह आपकी सहायता करेगा। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही अपने जीवन में एक सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना। ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।